कोर्ट में 70 वर्ष पुराने अयोध्या केस पर आज सुनवाई हुई।
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्री राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ही करेगी।
अयोध्या में जल्द भव्य राम मंदिर बनेगा।
राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो 2000 साल के बाद इन रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड, ही इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ गॉड। बट इन द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत और वाल्मीकि ही इज नॉट अ गॉड। आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए, तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो अगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, तो पढ़ा नहीं है, अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल, तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जो है ही नहीं भगवान।
हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखा उसमें एक जस्टिस हैं, जस्टिस मतलब उनको बहुत सारे कानून न्याय पता है, उनको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उसके आधार पर लोगों को देश को किस तरह से डायरेक्शन देना है, किस तरह से दिशा देना है, कैसे निर्णय लेना है, ये सब उनकी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि वो लॉ कॉलेज में गए हैं, उन्होंने लॉ बुक्स पढ़ी है, है ना। तो वो जो जिस तरह के वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, क्या राम मंदिर से अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, क्या फार्मर डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मॉलन्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, है ना, ये केवल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है राम मंदिर बनाना। और वास्तव में राम भगवान नहीं थे, वो तो जस्ट एक मनुष्य थे, एक महान मनुष्य थे, एक शक्तिशाली मनुष्य थे, लेकिन भगवान तो उनको अभी बता दिया गया है ना। तो इस तरह के उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। अभी हम समझेंगे इसका डिस्कस करने का फायदा क्या है ना, क्योंकि आजकल मीडिया में जो भी कोई लीडर्स हैं, है ना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हों या हमारे टीचर्स हों या क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ हैं, वो धर्म के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो अधिकतर लोग, सभी तो नहीं, अधिकतर लोग उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं, हाँ ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर है इसीलिए वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कितना तथ्य है, उन्होंने खुद शास्त्रों को कितना समझा है, उन्होंने सही और गलत का निर्णय किस तरह से लिया है, वो जाने बिना केवल हम एक ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडर्स को भागवत में बताया गया है, अंधा यथा अंधा उपगीय माना तेपिस्त्रतंता उरुदामनी बद्धा। एक अंधा है वो कई अंधों को लीड कर रहा है ना। एक अंधा कई अंधों को लीड करेगा तो क्या होगा उसका, वो भी गड्ढे में जाके गिरेगा, है ना। हम ये वीडियो और देखेंगे बाद में, आगे आने वाले सेशन में। लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ कितना अच्छा कितना बढ़िया बोला, है ना। तो जो मूर्खों की सभा में एक महामूर्ख है तो उसकी सब बड़ाई करते हैं, हाँ कितना बढ़िया बोला कितना अच्छा बोला, है ना। ऐसे कई कौए हैं, काए 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 चिल्ला रहे हैं, उसमें से एक कौए ने ऐसा काए काए बोला कि सब फेल हो गए उसके सामने, तो सब आह कितना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। तो सही और गलत का निर्णय कैसे लिया जाए पहले ये समझना पड़ेगा। मंदिर की आवश्यकता है कि नहीं है, राम भगवान है कि नहीं है, वो सही और गलत का निष्कर्ष कैसे आएगा, है ना। तो एक बहुत सुंदर इसमें वृत्तांत है। एक व्यक्ति था, है ना, जिसने एक मर्डर किया, खून कर दिया, और उसको सजा सुनाई गई, और सजा में उससे पूछा गया कि तुम्हारी कुछ आखिरी कुछ ख्वाहिश है, कुछ तमन्ना है आखिरी। तो बोला कि एक्चुअली मैंने जो मर्डर किया उसमें कुछ गलत नहीं किया मैंने, क्या गलत किया। तो जज है वो बहुत गुस्सा हो गया, गलत नहीं किया, तुमने एक व्यक्ति को एक बूढ़े व्यक्ति को इतना मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को तुमने पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, और तुम बोले तुमने कुछ किया नहीं। तो व्यक्ति बोलता है कि क्या गलत किया इसमें, क्या गलत क्या है इसमें। बोले तुमको गलत नहीं दिख रहा है, ऐसे निर्दयता से तुमने उसको मारा है और तुमको उसकी सजा मिलेगी। तो व्यक्ति बोलता है कि सर आप एक गवर्नमेंट के एक पार्ट है ना, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, इसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने मुझे बचपन में पढ़ाया था कि हम सब रसायन से बने हैं, रसायन के एक थैले हैं। तो अभी एक रसायन सब मिलके एक व्यक्ति का फॉर्म था। जैसे एक कार का एक्सीडेंट हो गया, कार क्रैश हो गई, या एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग गिर गई, तो एक व्यक्ति था वो छोटा छोटा टूट गया, वो है तो रसायन ना, क्योंकि अल्टीमेटली इस बॉडी के बनने से पहले हम नहीं थे और बॉडी के बॉडी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम नहीं होंगे। तो एक रसायन का फॉर्म दूसरे रसायन के फॉर्म में चेंज हो गया। तो मैंने क्या गलती की, आप ही लोगों ने तो सिखाया था मुझे बचपन में, तो मैंने ये कर दिया है ना। फिर बाद में क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई थी उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो अंतिम संस्कार में क्या हुआ, उसकी बॉडी तो बची नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो भी सब साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि बॉडी में क्या है, इतना पानी होता है, इतना कैल्शियम होता है, इतनी अलग अलग गैसेस होती हैं, इतना नाइट्रोजन होता है। तो उन्होंने 10 गैलन पानी लिया, कुछ कार्बन लिया, कुछ कैल्शियम लिया, उसको ऐसे ट्रक पे सजा दिया एक व्यक्ति की तरह, उसके ऊपर फूल रख दिए और उसका अंतिम संस्कार निकाल गया। सब रो रहे हैं, देखो ये चला गया, ये चला गया। व्यक्ति तो मर गया है लेकिन जो व्यक्ति में केमिकल्स हैं वो उन्होंने सजा के उसको रख दिया। तो सब आश्चर्यचकित होने लगे कि अरे अच्छा ये अंतिम संस्कार हो रहा है, पहली बार ऐसा अंतिम संस्कार देखा है जहां बहुत सारे केमिकल्स को रखकर उसको ले जा रहे। तो अगर हम केवल यही समझें कि हम एक रसायन है, इस जीवन से पहले हमारा कोई जीवन नहीं था और इस जीवन के बाद हमारा कोई जीवन नहीं होगा, केवल एक रसायन है, तो समाज में प्रेम है ना या फीलिंग्स भावनाएं, इनका स्थान, दर्द सुख दुख ये सब क्या है, ये केवल एक केमिकल रिएक्शन है। प्रेम क्या है ना, स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष ने स्त्री को देखा, एक हार्मोन रिलीज हुआ, प्रेम इतना ही है बस। ये फ्रेंडशिप क्या है, एक हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, उसके सामने केमिकल, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, ये फ्रेंडशिप है। तो क्या इतने ही हमारे संबंध है, इतने ही हमारे रिलेशनशिप है कि इसे हम केमिकल्स ही हैं? तो अगर हम केवल केमिकल ही हैं तो फिर जैसे आतंकवाद हुआ, मैं अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता हूँ, सामने वाला अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता है ना, मेरा एंजॉय करने का तरीका इसको मारना, मेरा एंजॉय, क्योंकि मैं केमिकल हूं वो एक केमिकल है, एक केमिकल ने दूसरे केमिकल को मार दिया, उससे क्या नुकसान हुआ। और ऐसा हो रहा है जैसे एवर्शन, एवर्शन होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, बच्चा क्या है, एक जस्ट एक एक टिश्यू है ना, एक मीन्स लंप ऑफ केमिकल, जस्ट एक लंप ऑफ केमिकल है। तो बच्चा है, अभी आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको हम घर में मार देंगे, उसका एवर्शन, और उसको बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि हमको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो उसको केमिकल को हमने निकाल दिया। तो जब एवर्शन करने में कोई समस्या नहीं है, ये लॉ बना दिया गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें एवर्शन लीगल हो गया है, और वहां पर जब कोर्ट में इस तरह से लीगल कराया गया तो सब बहुत खुश हो रहे हैं, वहां की जितनी स्त्रियां हैं सब खुशी के मारे रो रही हैं कि कब कब हम इसका इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया, हमारी हमारे जो राइट्स थे, हमारे अधिकार वो सुन लिए गए। तो जब एवर्शन जो है, केमिकल लंब को केवल निकालना है, तो मर्डर क्या है, वो जो केमिकल था वो एक ऑर्गेनाइज था, उसको हमने डिसऑर्गेनाइज कर दिया, वो दूसरे फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो केवल अगर रसायनों से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा बुरा कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए जो अच्छा होगा वो सामने वाले के लिए बुरा हो सकता है। तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होना चाहिए जिसमें हम समझ सके अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो वो हमको शास्त्र बताते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जैसे एक तालाब है, है ना, तालाब में पत्थर डाला, पत्थर तालाब में गिरा, उसका एक सर्कल बना, फिर दूसरा पत्थर डाला, उसका एक सर्कल बना, तीसरा पत्थर डाला, उसका सर्कल बना, तो सब सर्कल क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, है ना। तो हम, मैं एक तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरा एंजॉयमेंट करने का क्षेत्र बढ़ता गया धीरे, वो सामने वाला एंजॉयमेंट करना चाहता है, उसका फील्ड बढ़ता जा रहा है, और फिर आपस में दोनों में क्लैश हो गया, करेक्ट। तो अभी हमको इस चीज को समझना होगा कि अच्छा बुरा पाप पुण्य हमको शास्त्रों से निर्धारित करना पड़ेगा, केवल हम केमिकल नहीं है, केमिकल से बियॉन्ड एक कॉन्शियस लिविंग बींग है, आत्मा है, है ना। और ओवरऑल हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, इस जीवन के बाद हम कहां जाने वाले हैं, वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया। तब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अभी मंदिर की आवश्यकता है कि नहीं। भगवान मतलब राम एक महापुरुष है, एक शक्तिशाली कोई व्यक्ति है या भगवान है, तब हम उसको समझना प्रारंभ करेंगे, है ना। तो ये जो महाशय है जस्टिस, इन्होंने बोला कि वाल्मीकि रामायण में एक राम को एक महान पुरुष की तरह बताया गया, ठीक है। तो ये मेरे सामने वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है, इसमें ना कुछ ऐड किया गया है ना कुछ हटाया गया है, पूरा हिंदी इसमें संस्कृत श्लोकों का अनुवाद किया गया, ठीक है। ये वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा था, और उसका शुरुआत कैसे होता है कि नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, और वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह से चरित्रवान हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें सभी तरह के गुण हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें जो 6 तरह के अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ऐसा कोई व्यक्ति है इस पृथ्वी पर। तो फिर नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के उत्तर में बताना चालू करते हैं कि हाँ, अवध क्षेत्र, अवध राज में एक राम नाम के राजा हैं जिनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में जो भगवान राम को डिपिक्ट किया गया, बताया गया है, वो किस तरह से बताया गया है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, है ना, कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पत्नी कैसा होना चाहिए, भगवान राम और उनके जो पार्षद हैं उनके चरित्र से सब कुछ बताया गया कि एक आदर्श व्यक्ति कैसे होना चाहिए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, है ना। लेकिन वाल्मीकि मुनि ने रामायण, इस रामायण में बहुत जगह इस चीज को बताया है कि जिनकी मैं गुणगान गा रहा हूं, जो अवध के राजा हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं विष्णु है। इसका प्रमाण क्या है, yes। तो युद्ध कांड, रामायण में 7 कांड हैं, जिसमें से 6 कांड है युद्ध कांड। युद्ध कांड में 117वां सर्ग, मतलब 117वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है भगवान राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा भगवान राम की भगवत्ता का प्रतिपादन, कि सारे देवी देवता आए हैं, रावण मर चुका है, सब लंकावासी शोक कर रहे हैं, सारे देवी देवता आए हैं भगवान राम का गुणगान करने, और ब्रह्मा जी यहां स्थापित करने वाले हैं कि जो राम है वो भगवान है। इस अध्याय में 32 श्लोक हैं, उन 32 श्लोकों में 7वें और 18वें श्लोक में बताया गया है, जहां ब्रह्मा जी राम की स्तुति कर रहे हैं, आदि कर्ता स्वयं प्रभु, भगवान ये जो राम है वो कौन है, आदि कर्ता स्वयं प्रभु। और उसी अध्याय के 15वें और 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो राम है ये कृष्ण से अभिन्न है, ये जो राम है कृष्ण से अभिन्न है, तो ये बहुत स्पष्ट है। फिर उत्तर कांड जो सबसे अंतिम कांड है, उसमें 110वां सर्ग, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अंतिम में वापस जा रहे हैं विष्णु लोक को, तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो चारों भाई हैं ये चतुर्व्यूह हैं, चतुर्व्यूह मतलब संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और चौथा क्या है, वासुदेव। तो ये चतुर्व्यूह जो है ये चार भाई के रूप में है, और बाद में अपनी पूरी लीला पूरी करने के बाद फिर ये वैकुंठ धाम जिसका नाम है साकेत वहां पर चले गए अपने मूल रूप में, विष्णु रूप में। ठीक है, ये एक प्रमाण है। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड में ये चल रहा है, भगवान राम अपने धाम जा रहे हैं। राम की सभी शक्तियों ने उनका साथ देने के लिए प्रकट रूप धारण कर लिया, उनकी जो शक्तियां थी वो व्यक्ति के रूप में आ गई। राम के दाई ओर श्री तथा बाई ओर भूमि चल रही थी। तो आप जाएंगे साउथ इंडिया में, वहां पर कई विष्णु मंदिर हैं, वहां देखेंगे एक तरफ श्री है एक तरफ भू है, भू देवी है और एक श्री लक्ष्मी है। तो राम के दाई ओर श्री और बाई ओर भूमि चल रही थी तथा पीछे ओमकार, गायत्री तथा वेद सहित अन्य असंख्य शक्तियां उनका अनुसरण कर रही थी। तो जो गायत्री है, ओमकार है, वेद व्यक्ति रूप में भगवान राम के पीछे चल रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर जब भगवान सरयू नदी में प्रविष्ट हो रहे हैं तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अब आप अपनी सांसारिक लीलाओं को समाप्त करके इस विश्व से परे अपने दिव्य धाम में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आप ही शाश्वत भगवान विष्णु हैं और विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होने पर भी आप आदि और अपरिवर्तित रहते हैं। अभी इससे और प्रूफ क्या चाहिए? तो ये ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं जो ऊपरी तौर से रामायण को पढ़ते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि राम तो क्या एक साधारण व्यक्ति है, है ना, इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, है ना, कि एक मुस्लिम था नमाज को पढ़ रहा था और नमाज को उसने पढ़ा और पढ़ा कि नमाज में मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, तो उसने अगला पेज पढ़ना भूल गया। फिर उसने बाद में जाना उसने बंद कर दिया, फिर उसके जो मित्रों ने पूछा क्या हुआ, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते, बोले इसमें कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बोले तूने पूरा पढ़ा, तो पूरा देखा तो उसमें लिखा बिना पैर धोए मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसी तरह क्या है, ये जितने भी ये सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं या इस तरह से जस्टिस है, ये क्या है, इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि शास्त्र क्या है, बस एक माइथोलॉजी है, यह माइथोलॉजी नहीं है, तो केवल एक नैतिकता के स्तर पर हमको सिखाने के लिए। वो कभी इस चीज को निष्कर्ष पर नहीं आएंगे कि भगवान राम है और उनके आदेशों के अनुसार हमको जीवन जीना। फिर एक और हम देखते हैं इसका, तो एक शास्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। तो ब्रह्मांड पुराण में एक अध्यात्म रामायण है जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, नॉर्थ में इतना नहीं है। तो अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि जब सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम बहुत परेशान हो जाते हैं, और भगवान राम ढूंढ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, पक्षियों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ गई, पशुओं से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो जो शिव और पार्वती हैं वो देख रहे थे ये चीज़ को, वो देखते हैं कि ये मतलब मेरे पति हैं, उन्होंने बताया ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपने पत्नी के वियोग में इस तरह से विलाप कर रहे हैं, ये पता नहीं भगवान है कि क्या है, साधारण पुरुष है। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी ने, उन्होंने अपना रूप चेंज किया, सीता का रूप लिया और वहाँ पर जंगल में आ गए। फिर वो ढूंढने लगे, राम ढूंढ रहे थे और उनको वो पार्वती जो है जिन्होंने अपना वेश चेंज किया सीता के रूप में, वो आमने सामने आ गए। तो भगवान राम ने प्रणाम किया और उन्हें पूछा कि पार्वती जी आपका कैसे यहाँ पर आना हुआ, तो बहुत लज्जित हो गई कि मैंने किसकी परीक्षा लेने आ गया, किसकी परीक्षा लेने आ गई, है ना, वो लज्जित हो। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान कैसे हैं, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक स्टेज पर एक व्यक्ति एक एक्टर है जो कुछ नाटक परफॉर्म कर रहा है ना, तो कुछ ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, रोने का सीन आ रहा है या कोई एक्साइटमेंट आ रहा है, ऐसे भगवान विलाप कर रहे हैं सीता माता के लिए, लेकिन उनको पता है सीता कौन है, मैं कौन हूँ, पूरा ये सब घटना क्या चल रही है ना। तो इस तरह से वो इस तरह से पूरा अपना लीला करते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं या कम बुद्धिमान लोग हैं उसको पहचानने में उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान जो राम है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर हम देखते हैं दूसरे शास्त्र श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन है, जिसमें 18वां अवतार कौन है? भगवान राम। अगर हमारे जो कटजू जी हैं, ये जस्टिस हैं, ये शास्त्रों को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, तो इनको सारे शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। और उन शास्त्रों में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम। और भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में 24 अवतार दिए गए हैं, जिसमें से 18वां अवतार है भगवान राम का। फिर भागवतम का जो 9वां स्कंद है, 9वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में पूरा विस्तार से भगवान राम के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो या तो शास्त्र लिखने वाले बेवकूफ हैं या हमारे जस्टिस बेवकूफ है, दोनों में से एक बेवकूफ है। तो शास्त्र लिखने वाले तो परफेक्ट हैं है ना, और शास्त्र अपौरुष हैं, लेकिन जो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं जाने बिना, ये क्या है? ऐसे मेढक होता है ना, टर्राता है, टर्र टर्र टर्र, है ना। वो किसको निमंत्रण देता है? सांप को देता है। जितना ज्यादा टर्राएगा वो उतना जल्दी सांप आता है उसके पास। तो ये ऐसे लोग हैं है ना। ओके, तो सेकंड अभी हम देखते हैं कि भगवान राम के राज्य में प्रजा कैसे रहती थी, राम राज्य कैसे था। अगर हमने एक साइड पॉइंट में मान भी लिया कि जो राम है एक साधारण एक महापुरुष थे, मान भी लिया, कहने के लिए मान लिया, लेकिन उनके राज्य में क्या था वो देखते हैं। तो हमारे कटजू जी बोल रहे हैं कि फार्मर डिस्ट्रेस है ना, मेल न्यूट्रिशन है, और क्या हमारे कटजू जी ने बोला, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसका क्या होगा? ओके, बालकांड में बता रहे हैं भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा, उन्हें भूख अभाव एवं चोरी का कभी भय नहीं होगा, सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न फल सब्जी तथा दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्म निष्ठा तथा प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो सतयुग में पाई जाती थी, बाढ़ भूकंप अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप कभी नहीं होंगे, स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी और उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। ये राम राज्य का वर्णन है। फिर हम देखते हैं आगे और बता रहे हैं वाल्मीकि जी, भगवान राम के राज्य में वन नदियां पर्वत टीले भूमि सातों द्वीप तथा सातों सागर सभी प्राणियों के लिए जीवन संबंधी आवश्यकताओं की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते रहेंगे, सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा व्याधि जरावस्था दुख निराशा भय कष्ट का नितांत अभाव होगा। ये राम राज्य था। अगर हमने मान भी लिया कि राम जो है एक साधारण पुरुष थे, लेकिन उनके अनुसार अगर राज्य भी करेंगे, उनके नियमों के अनुसार अगर गवर्नमेंट भी होगी, तो इसका यह फल होगा, राम राज्य का ये फल होगा। करेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट, अभी ये जो बोल रहे हैं हमारे कटजू जी, बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने से इतनी, अभी इन्होंने तीन समस्याएं बताई हैं, बेरोजगारी बताई है और बच्चों में माल न्यूट्रिशन मतलब खाने को नहीं मिल रहा है उनको, और फार्मर डिस्ट्रेस है ना, जो किसान है बहुत चिंता में है। तो पहले इसका समाधान करो, ये मंदिर बनाने से क्या होगा है ना। ओके, तो मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी भगवान के जो आदेश हैं भगवत गीता में बताए, और भगवान के आदेशों को अगर हम पालन करते हैं तो भौतिक समृद्धि किस तरह से आती है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आज सुबह भी उदाहरण दिया था कि अगर आप लाइट का यूज कर रहे हैं अपने घर में, पानी का यूज कर रहे हैं है ना, और यूज करते करते आपने बिल भरना बंद कर दिया, तो क्या होगा, लाइट कुछ समय के बाद कट जाएगी, पानी का सप्लाई कुछ समय के बाद कट जाएगा। तो हमको ये सूर्य की जो रोशनी मिल रही है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, खाने को चीज़ें मिल रही हैं, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, तो कोई ना कोई तो इसको सप्लाई कर रहा है। तो हमारा, हमें कृतार्थ, हमें ऋणी समझकर उनको उनको रिटर्न करना है, कुछ पोर्शन है रिटर्न करना है। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट रोड्स बना रही है ना, स्ट्रीट लाइट लगा रही है, बहुत सारे अलग अलग सोशल वेलफेयर काम कर रही है, तो टैक्स देना पड़ता है, करेक्ट। उसी तरह से ये आग, पानी, खाना, ये सब जो हमको मिल रहा है देवी देवताओं के माध्यम से, उसका कुछ टैक्स देना होगा, है ना। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सप्लाई क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ये टैक्स का सिस्टम क्या है। और ये टैक्स ऐसा नहीं है कि हम आजकल तो टैक्स क्या पूरा हड़प लिया जाता है, ये टैक्स कैसा है, अगर टैक्स देंगे तो भौतिक समृद्धि और बढ़ेगी, टैक्स देंगे भौतिक समृद्धि और बढ़ेगी। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा, यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। क्या बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब लोग, सभी लोग किस पर निर्भर हैं, अन्न के ऊपर निर्भर है, सभी लोग अन्न या सब्जियां उसके ऊपर निर्भर है। पर्जन्य अन्न संभवा, अन्न कैसे आता है, बारिश से आता है, सही मात्रा में बारिश होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। बारिश कैसे आती है, यज्ञो भवति पर्जन्यो, जब व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब ऐसा नहीं कि यज्ञ कुंड है और उसमें आहुति कुछ डालना, यज्ञ कर्म समुद्भवा। और यज्ञ कहां दिए हुए हैं, शास्त्रों में दिए, तो शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति के जो स्वभाव के अनुसार उसकी कुछ नियत कर्म होते हैं। ऐसे जो वैदिक सोसाइटी है उसको जन्म के आधार पर नहीं, उसको कर्म और स्वभाव के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया है। ब्राह्मण मींस इंटेलेक्चुअल क्लास, आज भी हम देख सकते हैं कि समाज में ऐसे डिवीजन होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, ह्यूमन जो है रिसोर्स उसको यूज करना, ये उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तीसरा है मर्केंटाइल क्लास, जो पैसा, पैसा बनाना, बिजनेस करना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खासकर मारवाड़ी या गुजरात में जाएंगे वहां पर, वो स्कूल बस या कॉलेज केवल नाम के लिए जाते हैं, उनके खून में तो क्या होता है, पैसा कमाना, तो मर्केंट है। और तीसरे होते हैं आर्टिस्ट, क्राफ्ट बनाना या लेबर क्लास, जो बाकी तीनों वर्ग पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इन चारों वर्गों के नियत कर्म बताएं, नियत कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, शास्त्रों बताएं। तो अगर इन नियत कर्मों के अनुसार हम कार्य करेंगे तो अपने आप पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी, पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी तो पर्याप्त मात्रा में अन्न होगा, पर्याप्त मात्रा में अन्न होगा तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, और पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी तो फार्मर डिस्ट्रेस भी नहीं होगा। आजकल फार्मर डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, मंदिर बनाने से हो रहा है, उसका कारण क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, सुना है आपने। हरित क्रांति में क्या हुआ कि जितने भी खेत हैं खास पंजाब में, सब जगह पेस्टिसाइड चालू किया, क्यों, जिससे उत्पादन बढ़ जाए। और इतना पेस्टिसाइड यूज किया कि जो पूरी भूमि थी, जमीन था, पूरी बंजर हो गई, अभी वो फर्टाइल ही नहीं रही, वो वहां उगाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये फार्मर डिस्ट्रेस हो रहा है आपकी हरित क्रांति की वजह से। और अगर लोग भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे तो अपने आप ही भौतिक समृद्धि होगी, है ना। जैसे हम देखते हैं एक राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर हैं, उनके राज्य में बताया जाता है कि जो बारिश है टाइम पर होती थी, और पृथ्वी व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, गायें इतनी प्रसन्न होती थी कि उनके जो थन से दूध निकलता था और जो घास होती थी दूध से भर जाती थी, इतनी प्रसन्न थी गाय, है ना। और नदी, समुद्र से खनिज आभूषण, डायमंड ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते थे। लोग बीमार नहीं पड़ते थे, ज्यादा सर्दी नहीं होती थी, ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों के अनुसार, भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो अपने आप ये डिस्ट्रेस नहीं होगा, अपने आप परेशान, मानसिक रूप से क्लेश ही नहीं होगा, है ना। एक ही उदाहरण। दूसरा कि जो ब्रिटिशर्स हैं जब भारत में आए तो उन्होंने भी कुछ लोगों को यहां भेजा भारत का सर्वे करने के लिए, है ना। और भारत का उन्होंने सर्वे किया, उसके कुछ पेपर्स उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने रख दिए। फिर अभी कुछ साल पहले एक कोई मिस्टर पाल हैं, मैं नाम भूल गया, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए, परमिशन लिया और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा और उसके आधार पर एक बुक बनाई जिसका नाम है इंडिया एज दे सॉ, भारत जैसा कि उन्होंने देखा। उन्होंने बताया कि भारत में गरीबी जैसा कुछ नहीं था, भौतिक रूप से बहुत समृद्ध थे लोग, इतनी सिक्योरिटी था कि लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, दूध मक्खन दही फ्री में बढ़ता था और लोग स्टेबल फैमिली था, संयुक्त परिवार था। ये डाइवोर्स होना, फैमिली रिलेशनशिप में हमेशा टेंशन बना रहना, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। और सोना, सोने की चिड़िया बोलते थे, इतना सोना था। और लोग मक्खन से होली खेलते थे, बटर से होली, इमेजिन कर सकते हैं आप मक्खन से होली खेलना। इतनी समृद्धि थी, क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे। तो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जितना मुस्लिम ने डैमेज नहीं किया वैदिक संस्कृति को, उतना ब्रिटिशर्स ने डैमेज किया। मुस्लिम ने तो क्या किया, लूट के ले गए, है ना। वो गजनवी आया, वो सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और लूट के ले गए। लेकिन लोग क्योंकि इस स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे थे तो भौतिक समृद्धि फिर से बन गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारतीयों के मन से और हृदय से शास्त्रों पर जो श्रद्धा थी उसको पूरा कट कर दिया और उन्होंने बोला ये शास्त्र जस्ट एक माइथोलॉजी है, एक दंत कथाएं हैं, ये आदिवासियों के लिए है, ये पिछड़े लोगों के लिए है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग चलना। इस तरह लोगों के मन में भ्रम डाल दिया। और आज देखिए आप भारत की स्थिति क्या है। हम ये बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है उसका क्या हो रहा है। एक्चुअली मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, उसकी डेफिनेशन है शास्त्र में, क्या बताई है कि आप अपना खाना, रोटी, कपड़ा और मकान कम से कम समय में, कम से कम प्रयास करके अगर आप उसको हासिल कर सकें तो उस व्यक्ति को मटेरियली एडवांस बोला जाता है। कम से कम समय में, कम से कम प्रयास करके अगर आप बेसिक नेसेसिटीज को एक्वायर कर सकते हैं तो हम बोलेंगे ये कंट्री या ये व्यक्ति भौतिक रूप से विकसित है, डेवलप्ड है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज 25, 27, 30 साल तक भी चिंताएं रहती हैं, क्या होगा आगे चल के, जॉब लगेगा नहीं लगेगा, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितनी एंजाइटी होती। और प्लेसमेंट हो भी जाता है तो वहां पर इतना प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, ऊपर से बहुत प्रेशर आता है, बहुत कंपटीशन होता है, तो अपने आप में जॉब को सस्टेन करने के लिए बहुत पूरा मेहनत करना पड़ता है। तो ये सिस्टम हमने बिगाड़ा है, है ना। नो डाउट अभी उस सिस्टम में है, उसको हम किसी तरह से कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि रियल भौतिक समृद्धि क्या होती है, वो कैसे आती है। तो हमारे जो ये मार्कंडे कटजू जी बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा और इस ये करो, माल न्यूट्रिशन हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो ये है, उस सॉल्यूशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, 10 व्यक्ति का काम एक मशीन कर रही है और एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति, उन 9 लोगों का क्या हुआ। श्रील प्रभुपाद बताए, श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे तो बोले कि श्रील प्रभुपाद ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो प्रभुपाद बोले कि बेरोजगारी तो और बढ़ेगी, अभी आप जितने ज्यादा मशीनों का आविष्कार करेंगे उतना आपका जो मैन पावर कम होता जाएगा, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ गिने चुने लोग होंगे तो बढ़ेगी। अभी आप देखो जो गृह उद्योग थे या घरों में जो लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, है ना। तो अभी क्या हो गया, समाज का एक वर्ग क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है, और समाज का एक वर्ग क्या हो गया, बहुत ही जिसके पास पैसा नहीं है। ये डिफरेंस बहुत आ गया, पहले इतना डिफरेंस नहीं था, सब गरीबी जैसे था ही नहीं कुछ, क्योंकि लोग फॉलो कर रहे थे, शास्त्रों को फॉलो कर रहे थे, करेक्ट। तो हमारे जो ये खटजू जी बोल रहे हैं, इनको शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। फिर अभी प्रश्न आता है कि फिर मंदिर की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम शास्त्रों को फॉलो कर लेंगे, घर में बैठ के पढ़ लेंगे और फॉलो कर लेंगे, मंदिर की क्या आवश्यकता, इतना महंगा मंदिर क्यों बना रहे। आप लोग भी गए थे ना यहाँ देखने मंदिर, तो उसमें बहुत खर्च हो रहा है, उसको और किसी काम में लगा सकते थे। तो मंदिर वास्तव में है क्या, हम ये देखेंगे। मंदिर एक हॉस्पिटल है, है ना, मंदिर एक हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में कुछ दक्ष एक्सपर्ट डॉक्टर है, वहां एक मेडिसिन मिलती है, वो क्या है, भगवान का नाम और भगवान की कथा, हरि कथा और हरि नाम। वहां डाइट, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है और बताता है ये डाइट है, ये खाना, इतना खाना है, तला हुआ नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना। तो डाइट क्या है, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद, है ना। तो वो ये डॉक्टर कौन से हैं, जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है ना, और इस गंदगी के कारण ही समाज में गंदगी है। अब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो समाज में अपने आप ही सब समस्याएं चली जाएंगी, है ना। हम जैसे देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, उसमें देख कि उनका कोई शत्रु नहीं था, और शत्रु ना होने की वजह से सब बहुत बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से रहते थे, कोई ऐसे टेंशन था ही नहीं। आज देखो आप सिक्योरिटी का कितना टेंशन है, आप बैंक में भी जमा कर दो 10 साल, लॉकर भी लगा दो तो भी वो तोड़ के ले जाएंगे, कितनी एंजाइटी है। क्यों, क्योंकि लोगों को शिक्षा की कमी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन की कमी है। अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेगी तो अपने आप लोग सही हो जाएंगे। और समाज किससे बना है, देश किससे बना है, लोगों से बना है। मान लीजिए आप कोई, आप सिविल ब्रांच है यहाँ पर किसी का, किसका आपका है ना, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और आपने जो ईट है या सीमेंट है वो एकदम थर्ड क्लास यूज किया आपने और बड़ी बिल्डिंग बना दी, तो क्या होगा, बिल्डिंग ढह जाएगी। लेकिन फर्स्ट क्वालिटी की आप सीमेंट लेंगे या ईट लेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग हमेशा रहेगी। तो इस समाज किससे बना है, देश किससे बना है, वहां के लोगों से, करेक्ट। अभी लोगों के अंदर ही करप्शन भरा हुआ है, लोगों के अंदर ही गंदगी भरी हुई है, तो उससे मिलके जो समाज होगा वो क्या होगा। इसलिए बोलते थे प्रभुपाद, बोलते थे कि दिस इज पॉलिश्ड एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन, है ना, सोफेस्टिकेटेड एनिमल सिविलाइजेशन, सोफेस्टिकेटेड एनिमल सिविल, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वृत्ति तो वही है पशु की जैसी। तो ये जो मंदिर है वो क्या है, हॉस्पिटल है, जहां पर हमारा भव रोग उसका ट्रीटमेंट होता है, वहां पे उसकी डाइट दी जाती है, कृष्ण प्रसाद दिया जाता है और मेडिसिन दी जाती है। फिर ये मंदिर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो वहां पर जो भी हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी ज्ञान दिया जाता है शरीर या शरीर से संबंधित दिया जाता है। आप कोई भी नॉलेज लो, आपकी कोई भी ब्रांच लें, हम मेडिसिन लें, इंजीनियरिंग लें, आर्किटेक्ट लें, अल्टीमेटली उसको बॉयल डाउन करें तो कहाँ पे आता है, शरीर या शरीर से संबंधित। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसा है, जहां पर सोल से संबंधित नॉलेज दी जाती है। फिर मंदिर क्या है, मंदिर है वैदिक रिसर्च लेबोरेटरी। मंदिर क्या है, एक लैब है, जहां पर लैब पे आप रिसर्च करते हैं ना, आप लोग भी रिसर्च कुछ करते होंगे ना या करेंगे आगे चल के, रिसर्च की जाती है और नया क्या निकाल सकते हैं। तो यहां भी क्या है, भगवत तत्व का अनुसंधान किया जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है, इटर्नल क्या है, टेम्परेरी क्या है, मैं कौन हूं, ये सब सत्य के बारे में अनुसंधान किया जाता है, है ना। और फिर ये मंदिर क्या है, यूनिवर्सिटी है। जैसे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहां भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिसको मेजर दो डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं भागवत मार्ग और पंचरात्रि मार्ग, ये टेक्निकल नाम है। भागवत मार्ग मतलब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, और एक पंचरात्रिक मार्ग जहां पर डीटी वर्शिप करते हैं, है ना, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो मंदिर केवल ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग जो हैं जिनको जीवन में निराश थे, हताश थे, कोई काम नहीं कर पाए, वो मंदिर में आके बैठे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं, मंदिर नहीं है। मंदिर का एक डायनेमिक सेंटर है ना, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व, उसको सही डायरेक्शन कैसे मिली जाए। जैसे राजा होते थे, भगवान रामचंद्र हैं या युधिष्ठिर महाराज हैं, उनके उनका जो राज होता था उसमें कुछ उनके गुरु होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन गुरु के माध्यम से ही वो अपना राज्य चलाते थे। कोई भी समस्या आती थी, कुछ भी परेशानी होती थी, बोलते थे अच्छा तो गुरुदेव इस सिचुएशन में कैसे किया जाए। तो ब्राह्मण एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको शास्त्रों का नॉलेज है, इसीलिए बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में समाज में क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद बोले कि जो इस्कॉन मूवमेंट है वो ऐसे लोगों को क्रिएट करने के लिए बना है जो इस समाज को डायरेक्शन दे सके। आज समाज की तुलना किससे की है, शरीर से, लेकिन शरीर में अगर सिर नहीं है, अगर सिर है तो ब्रेन क्या है, पूरा पागल है, ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, तो शरीर कैसा होगा, शरीर भी कोई काम का नहीं रह जाएगा क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह समाज में अगर कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो शास्त्रों को पढ़कर उसको खुद पालन करके दूसरों को बता सके, तो वो कैसा हो जाएगा, समाज कैसा हो जाएगा, है ना, पागल की तरह होगा, मैड हाउस हो जाएगा। और ऐसे ही आजकल हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर गाइड करने वाले लोग नहीं है, इसीलिए मंदिरों की आवश्यकता है। ओके, अभी ये प्रश्न आता है कि राम मंदिर फिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है ना, तो इस्कॉन क्या बोलता है, राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना। इस्कॉन बोलता है यस, बनना चाहिए, और केवल अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरना, तो केवल अयोध्या में नहीं, हर जगह राम मंदिर बनना चाहिए, और इसके लिए इस्कॉन प्रयास कर रहा है, इसीलिए इस्कॉन प्रचार कर रहा है, हर जगह जा रहा है, कॉलेज में है, घर घर है, सोसाइटीज, वहां जाके बता रहा है कि राम का संदेश क्या है, कृष्ण का संदेश क्या है, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन आजकल क्या है, एक राम मंदिर क्या हो गया है, एक राम मंदिर जो इशू है वो एक सांप्रदायिक झगड़े में चेंज हो गया, हिंदू मुस्लिम झगड़े में चेंज हो गया, है ना, जबकि भगवत गीता की जो बेसिक टीचिंग है वो क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा ना तो हिंदू होती है, ना मुस्लिम होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना ब्लैक होती है, ना वाइट होती है, ना अमेरिकन होती है, ना यूरोपियन होती है, ना ब्राह्मण होती है, ना क्षत्रिय होती है, आत्मा होती है कृष्ण की दास, भगवान की दास, है ना। तो जो हिंदू मुस्लिम राइट्स और हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही तो भगवान के दास हैं। अभी वो अल्लाह बोल रहे हैं, कृष्ण है, राम है, तो झगड़े की क्या बात है। तो अभी वो क्या है, कम्युनल राइट्स में चेंज हो गया, अभी राम मंदिर का इशू नहीं रह गया। और जो इस राम मंदिर के प्रणेता है, उसको स्थापित करना चाहते हैं, उनमें उनमें से भी ज्यादातर लोगों को राम की शिक्षाओं के बारे में नहीं पता। दुर्भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है कि राम मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन राम की शिक्षाओं के बिना राम राज्य चाहते हैं। ये एक तरह से बोले राम के बिना राम राज्य चाहते हैं, तो कैसे होगा। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोले कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म, कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन धर्म के पीछे जो तत्व ज्ञान है वो नहीं पता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये तो सहजिया बन जाएंगे, सस्ता लेंगे, हाँ हमारे राम हमारे कृष्ण, या कट्टर बन जाएंगे, और ऐसे हो रहा है, हम मुस्लिम हैं बाकी काफिर हैं, हम हिंदू हैं ये इनको मार दो, है ना। जैसे अभी कुछ समय पहले राजस्थान में एक चला था कि हम इस कास्ट के हैं और हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ट्रेन की पट्टियां उखाड़ दी, ट्रेन सब बंद कर दे, हम ये हैं। तो ये सब क्या है? देहात बुद्धि है, बॉडीली कॉन्सियसनेस है, तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है? तो हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं इतने, और कई हजारों कई लाखों लोग मर चुके हैं। ये इशू अभी का नहीं है, ये करीब मतलब 20 साल से ज्यादा समय से ये इशू चल रहा है और अभी तक नहीं हो पाए, क्योंकि लोग सोच रहे हैं अरे मस्जिद बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, और वो लोग बोल रहे हैं नहीं राम मंदिर बनना चाहिए। भाई पहले चर्चा तो करो, अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह क्या बताना चाह रहे हैं, राम क्या बताना चाह रहे हैं, मिलके करो, क्या दिक्कत है। तो वो इसीलिए मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ रियल एजुकेशन आपको बताई जाएगी। लेकिन कम से कम ये है कि जब राम मंदिर इशू उठ रहा है तो कुछ तो लोगों में भावनाएं हैं कि राम है, राम का नाम लेना है या अयोध्या, कुछ तो लोग, नहीं तो लोग आजकल धीरे धीरे नास्तिक ही बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ये मटेरियलिज्म क्या है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है ना, जस्ट एंजॉय एंजॉय एंजॉय। तो कभी कुछ ऐसा इशू आता है राम मंदिर के बारे में तो थोड़ा तो लोग सोचते हैं कि यार हम सपोर्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये फीलिंग अच्छी है, ये भावनाएं अच्छी है, लेकिन भावनाओं को प्रॉपर डायरेक्शन मिलना चाहिए शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा। जब तक उन भावनाओं को हम चैनल नहीं करेंगे तो केवल भावना के स्तर पर रहेंगे, हाँ हम यस राम मंदिर बनना चाहिए, उनको मारूंगा, तो इससे क्या होगा। और ज्यादातर जो राम मंदिर के पक्ष में है, जो धर्म गुरु है, वो ज्यादातर क्या है, मायावादी है, इम्पर्सनलिस्ट है। और मायावादी मतलब जो भगवान के रूप को नहीं मानते। तो आप जिन राम की स्थापना कर रहे हो मंदिर में, मूर्ति की स्थापना कर रहे हो, तो उनका कॉन्सेप्शन क्या है कि ये जो राम है वो परम नहीं है, वो तो निराकार परम है, और इस निराकार से भगवान का रूप आया। और डीटीस, जैसे आपने पिछले हफ्ते आपका सेशन हुआ था ना, विग्रह पूजा क्या होता है, मूर्ति पूजा क्या होता है, तो उसमें बताया गया था कि जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होते हैं, उनके अंदर भगवान नहीं होते, वो स्वयं भगवान होते हैं, वो स्वयं भगवान है, वो उन्होंने भौतिक तत्व से बनकर एक रूप धारण किया है जिससे हम आदान प्रदान कर सकें, जिनको भोग लगा सकें। और हमने कई उदाहरण भी देखे थे जिसमें भगवान के विग्रह बात करते हैं, अपने साक्षी गोपाल, है ना। तो अभी जो इस आंदोलन के प्रणेता हैं वो अधिकतर इम्पर्सनलिस्ट मायावादी, जिनकी धारणा क्या है, राम भी एक निराकार ब्रह्म से आए, राम कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बस पर्सनैलिटी कुछ समय के लिए आई और खत्म हो गई। तो इसको भगवान ने भगवद्गीता में क्या बोला है, ऐसे लोगों की और कड़जू जैसे लोगों की ऑलरेडी भगवद्गीता में भविष्यवाणी, पता है आपको भगवद्गीता में भविष्यवाणी उनके बारे में। एक श्लोक है, क्या है, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रता ज्ञाना आसुरिम भाम आश्रिता, कि चार तरह के लोग हैं जो मेरे शरण नहीं लेंगे। कौन है, मूढ़, निपट मूर्ख लोग हैं, नराधम लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, आसुरिम भाव आश्रिता जो भगवान के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, और एक है माया अप्रता ज्ञाना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है, यूनिवर्सिटी में बहुत ऊंचे पद पर है, जस्टिस है, लेकिन माया ने उनका ज्ञान हर लिया। रावण के पास भी बहुत नॉलेज था, रावण भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, वेदों का ज्ञान था, वो क्या सोचता था, अरे वन में घूमने वाला राम ये क्या करेगा, साधारण मनुष्य है ये क्या कर पाएगा, भगवान ने क्या किया वो हमको पता है, है ना। तो ये कोई नया एलिगेशन नहीं है, नया आरोप नहीं है, पहले भी आरोप लगाए गए, और सबसे पहले रावण ने आरोप लगाया था, और रावण का जैसे हाल हुआ ऐसे ही इन सब लोगों का होगा, है ना। तो इसीलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए, हमें शास्त्रों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो इस तरह से लीडर्स, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं समाज के, जो हमको भटका रहे हैं या भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आके जो सही गुरु हैं, सही परंपरा है, उससे सुनना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी समाप्त करेंगे, किसी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई चैलेंज हो तो कर सकते हैं। यस,
जरूरी है वहीं पे राम मंदिर में, कहीं और भी तो फिर अपना डिस्प्यूट क्यों,
हाँ और दूसरी जगह भी बन सकता है,
फिर भी इतना डिस्प्यूट कर रहे
हैं, क्योंकि अभी वो राम जन्मभूमि पर है ना, वो बता रहे हैं कि जो एरिया है यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ, करेक्ट, हमें यही मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो दूसरी जगह भी बन सकता है। अल्टीमेटली राम कहाँ पर है, जहाँ उनकी शिक्षाएं, करेक्ट। तो राम का मंदिर तो हम यहां भी बना सकते हैं, भोपाल में भी बना सकते हैं, इवन अयोध्या में भी दूसरी जगह बन सकता है, लेकिन नहीं, तुमने यहां बाबरी मस्जिद क्यों बनाई? फिर यहां बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, नहीं मस्जिद नहीं बनेगी, मंदिर बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। तो एक क्या हो गया, शिक्षाएं तो साइड में हो गई और फिर वो आ गया झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े चालू हो गए। तो अगर कोई लॉजिकल समझेगा ठीक है, उसमें क्या है, मेन भगवान राम का प्रचार होना चाहिए, लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, तब वास्तव में राम उपस्थित है। अगर नॉलेज ही नहीं है, उसका प्रचार ही नहीं है, तो कितने ही बड़े मंदिर बना दो उससे क्या फायदा होगा। अभी वहां राम मंदिर बने ना बने अलग बात है, भारत में बहुत सारे राम मंदिर हैं, करेक्ट। ये बिरला मंदिर है यहाँ पर, आप लोग गए होंगे है ना, वहां भी सारे राम दरबार है कि नहीं है ना, या बहुत सारे ऐसे राम मंदिर होते हैं। आप अधिकतर मंदिर में, सब नहीं, अधिकतर मंदिर में क्या होता है, हम जाते हैं थोड़ा प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, वापस आ जाते हैं, हमें लगता है हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हमने अपनी ड्यूटी निभा ली। लेकिन नॉलेज, इसीलिए क्या होता है, ये मंदिर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये यूनिवर्सिटीज है, तो कहीं बन सकता है, यस, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप उनको समझाइए, यस यस, दोनों ही पक्ष गलत है, दोनों पक्ष ही इग्नोरेंस में, एक इग्नोरेंस दूसरे इग्नोरेंस से लड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। दोनों ये समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेटली अल्लाह है, ये राम का संदेश क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। और कोई प्रश्न?
अल्लाह जो है या तो मतलब वो भी सब जैसे करने की भगवान एक है, इसका क्या कंसेप्ट है कि भगवान एक है, फिर अलग अलग रूप में भगवान मतलब सब उसी साथ में आते हैं?
तो जैसे अल्लाह है, अल्लाह मतलब सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, और जैसे बाइबल में बताया है सुप्रीम फादर, परम पिता। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अपने मैसेंजर्स हैं या अपने दूत हैं, मसीहा हैं, उनको भेजते हैं। तो जिनका जिस तरह का स्तर होता है मन का जो जितना वो समझ पाएंगे उसके अनुसार उनको संदेश दिया जाता है। तो अल्लाह भगवान का ही एक फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म है ना। ऐसे सुप्रीम फादर कौन है, तो बाइबल में बताया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो अगर मनुष्य है उसका रूप है तो सुप्रीम फादर है उसका भी रूप होना चाहिए। लेकिन जो बाइबल और कुरान में है उसमें बहुत विस्तार से नहीं बताया, बहुत थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया। लेकिन जो वैदिक लिटरेचर है उसमें बताया गया कि जो अल्लाह की बात कर रहे हैं आप, सुप्रीम फादर की बात कर रहे हैं, वो है कौन, कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका घर है, करते क्या है, क्या उनका संदेश है, वो सब विस्तार से यहाँ बताया। तो उसको बोलते हैं हार्मोनाइज, समन्वय, कैसे शास्त्रों का समन्वय करना, ऐसा नहीं कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ये तीनों आपस में झगड़ रहे हैं, समन्वय करना, हार्मोनाइज। और कोई प्रश्न? ओके, तो हम समाप्त करेंगे। तो आशा है कि अगर इस तरह के और एलिगेशन आते हैं भगवान राम पर या कृष्ण पर, तो आप लोग उसका उत्तर दे पाएंगे उन लोगों को, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान रामचंद्र की जय।